ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 43। प्रतिशुतम ददामीति वचनस्तन्न मृषा भवेत्, वधम नारति चंद्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते। प्रतिशुतम ददामीति वचनस्तन मृषा भवेत्, मदम नारति चंद्रोऽपि तत्र इदमुपकल्पते। प्रतिशुतम ददामीति वचनस्तन मृषा भवेत्, वदम नारति चंद्रोऽपि तत्र इदमुपकल्पते। प्रतिशुतम वचन दिया गया, ददामी दूंगा, इति इस प्रकार, वच कथन, तत वह, ना नहीं, मृषा झूठा, भवेत हो सकता है, वधम हत्या, ना नहीं, अर्हति उपयुक्त है, च तथा, इंद्र केंद्र, अपि भी, तत्र उस प्रसंग में, इदम यह, उपकल्पते उपयुक्त है। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, मैंने बोलिए उसे एक वर देने का वचन दिया है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन इंद्र वध किए जाने योग्य नहीं है। इस स्थिति में मैंने जो उपाय हल सोचा है वह उपयुक्त है। तात्पर्य पढ़ता हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। कश्यप मुनि ने यह निष्कर्ष निकाला कि दिति ऐसा पुत्र चाहती है जो इंद्र का वध कर सके, आखिर वह स्त्री है, अतः अधिक चतुर नहीं है। मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि इंद्र के वध के विचार को त्याग स्वयं वैष्णव अर्थात कृष्ण की भक्त हो जाए। यदि वह वैष्णव नियमों को अंगीकार कर लेती है तो उसका कलुषित हृदय निश्चय ही शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, भक्ति की यही विधि है। कृष्ण भावनावर इतना प्रबल होता है कि परम मलिन श्रेणी का व्यक्ति भी शुद्ध होकर श्रेष्ठतम वैष्णव बन जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का यही मुख्य उद्देश्य है। नरोत्तम दास ठाकुर का कहना है, व्रजेन्द्र नंदन ऐ शची सुत हैल सई, बलराम हैले निताई, दीनहीन यत छिल हरि नामे उद्धारिल, तर साक्षी जगाई मधाई। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य उन पतित आत्माओं के उद्धार के हेतु है जो सदैव भौतिक सुख के लिए कुछ न कुछ आयोजन करते रहते हैं। उन्होंने इस युग के मनुष्यों को हरे कृष्ण महामंत्र के जपने का अपूर्व अवसर प्रदान किया है, जिससे वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होकर पूर्णतः शुद्ध बन सकें। एक बार शुद्ध वैष्णव बन जाने पर कोई भी देहात्म बुद्धि से परे चला जाता है। इस प्रकार कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाने का प्रयत्न किया, जिससे वे इंद्र के वध करने का विचार त्याग दे। उनकी इच्छा थी कि दिति तथा उसके पुत्र शुद्ध बने, जिससे वे वैष्णव बनने के योग्य हो सकें। कभी कभी अभ्यास करता वैष्णव नियमों से विचलित हो जाता है और संभावना रहती है कि उसका पतन हो जाए, किंतु कश्यप मुनि ने सोचा कि भले ही यदि कोई वैष्णव नियमों से विचलित हो जाता है तो संभावना रहती है कि उसका पतन हो जाए, पर यदि कोई वैष्णव नियमों का अभ्यास करते हुए गिरता है तब भी कोई हानि नहीं होती। यहां तक कि भ्रष्ट वैष्णव को भी उत्तम फल प्राप्त होता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, स्वल्मम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वैष्णव नियमों के रंश मात्र पालन से भी इस संसार के बड़े से बड़े भय से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए कश्यप ने अपनी पति दिति को वैष्णव बनाने के लिए उपदेश देने की सोची। हरे कृष्ण, मैंने उसे एक वर देने का वचन दिया है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन इंद्र वध किए जाने के योग्य नहीं है। स्थिति में मैंने जो उपाय सोचा है वह उपयुक्त है। ट्रांसलेशन के अंदर जो बात उभर के आ रही है वो है कि अगर कोई देवी देवता या ऋषि मुनि या भक्त वर दे देता है, प्रॉमिस कर देता है, वचन दे देता है, तो उसको वो तोड़ नहीं सकता, रिवर्स नहीं कर सकता, वापस नहीं दे सकता, उसको पूरा करना ही है। दिस इज अ मस्ट। किसी भी तरीके से आप उस वचन को वापस नहीं ले सकते, उसको पूरा होना ही है। बट एक यहां कंडीशन अप्लाई हो रही है, वो क्या है कि उसका तोड़, चेंज या मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत के अंदर कथा आती है राजा द्रुपद की। राजा द्रुपद ने शिवजी की पूजा अर्चना करी, उन पर ध्यान लगाया, उनकी सेवा करी और विधिपूर्वक बिल्कुल सिस्टमेटिकली, जैसा कि शास्त्रों में रिकमेंडेड है, जैसा कि शिवजी की पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद जो है उसने देखा कि शिवजी जो है उसके सामने प्रकट हो गए। तो शिवजी ने प्रकट होने के बाद उससे कहा कि हे द्रुपद, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें संतान प्राप्ति में पुत्री प्राप्त हो। तो द्रुपद अड़ गए, कहने लगे कि जब मैंने विधि पूर्वक पूजा करी है, मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है आपकी पूजा में, नो मिस्टेक, तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि वर मांग, स्टैंडर्ड्स यही हैं कि आपको पूछना चाहिए था वर मांग, परंतु आपने नहीं पूछा, आपने छूटते ही कहा या तुझे पुत्री की प्राप्ति हो। तो मुझे तो पुत्र चाहिए, मुझे पुत्री नहीं चाहिए, मेरे को तो पुत्र की इच्छा है और आप मुझे दे रहे हैं पुत्री, तो ये मामला ठीक नहीं है। अब शिवजी कहने लगे भी देखो ऐसा है, वर तो दिया जा चुका है, इट्स बीन गिवन, अब उसको जो है वापस नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। अब तुम्हें जो है पुत्री की ही प्राप्ति होगी, तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता, बट मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूं। मॉडिफिकेशन क्या है कि समय पाकर ये पुत्री जो है पुत्र बन जाएगी, समय पाकर ये पुत्री जो है पुत्र बन जाएगी। तो राजा द्रुपद जो है थोड़ा शांत हो गए, प्रसन्न हो गए, चलो कोई बात नहीं, कुछ ही सालों की तो बात है, अल्टीमेटली तो इस पुत्री को पुत्र बन ही जाएगा। वो पुत्री का नाम रखा गया शिखंडनी, उसका पुत्र की तरह लालन पालन किया गया, बिल्कुल धनुर्विद्या सिखाई गई, घुड़सवारी सिखाई गई, राजविद्या सिखाई गई, नीति शास्त्र सिखाया गया, सारे के सारे कार्य जो एक राजकुमार के लिए असेंशियल होते हैं वो उसको सिखाए गए। राजा द्रुपद को शिवजी के वचनों पर 101% भरोसा था, कोई उनको डाउट नहीं था कि इन्होंने अगर कहा है पुत्री पुत्र बन जाएगी तो नहीं बनेगी, ऐसा कहीं उनको जो है डाउट नहीं था। अब अब उन्होंने कहा कि समय बीतता जा रहा है, लड़की जो है बड़ी हो गई है, इसका मैंने पुत्र की तरह लालन पालन किया है, तो मेरे लिए तो ये पुत्र है और इस पुत्री को पुत्र बन ही जाना है। तो उन्होंने जो है राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ उसकी शादी कर दी। अपनी पुत्री की शादी राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ कर दी। और जो दो स्त्रियां जो हैं जब मिलन में मिली तो राजा हिरण्यवर्मा की लड़की ने बलवा कर दिया कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी शादी एक लड़की के साथ कर दी गई। राजा द्रुपद जो है वो धूर्त हैं, वकार हैं, चालाक हैं, धोखेबाज हैं, ये कार्य उन्होंने ठीक नहीं किया। तो राजा हिरण्यवर्मा ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया है तो जो शिखंडनी है वो सोच रही है कि सारा जो कार्य हो रहा है, प्रजा हताहत हो रही है, मेरे पिता का टेंशन हो रहा है, मेरी माता को टेंशन हो रही है, सारे राज परिवार में टेंशन हो रही है, ये मेरी वजह से है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो वो जो है महल को छोड़ के वन में चली जाती है। वचन देखिए वचन कैसे पूरा होता। जब वन में चली जाती है तो उदास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, रात्रि का समय है, तो स्थूनाकर्ण नाम से एक यक्ष आता है वहां पर, जो यक्षों का राजा है वहां पर उस एरिया के। तो वो जो है उससे कहता है, बेटा तुम यहां कैसे बैठी हुई हो? कहती जी ऐसे ऐसे है, मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूं, मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई है और शिवजी ने एक वचन दिया था वो पूरा हुआ नहीं है, मेरे पिता ने मुझे पुत्र बन के पाला था, राजा हिरण्यवर्मा की लड़की से शादी कर दी थी, परंतु उन्होंने हम पे हमला कर दिया है। तो उन्होंने सोचा एक क्षण के लिए, फिर कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूं, मेरा पौरुष तुमको देता हूं और तुम्हारा अस्तित्व लेता हूं एक साल के लिए, एक साल के बाद तुम फिर लौट के आना और अदला बदली कर लेंगे, वापस हो जाएगा। ये शो करता है कि उस जमाने में सर्जरी कितनी एडवांस थी, आज भी होता है, सेक्स चेंज हो जाता है, आज भी अगर आप अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर मिलेगा आपको कि स्त्री के पुरुष बनाया और पुरुष को स्त्री बनाया गया। जब यह अदला बदली हो जाती है तो शिखंडनी जो है वापस चली जाती है और डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, हमला वापस हो जाता है, दोनों सुखपूर्वक एक वर्ष के लिए रहते हैं और उसका नाम हो जाता है शिखंडी। इस दौरान में जो यक्षों के राजा कुबेर हैं वो आते हैं अस्तूनाकर्ण के महल में। अस्तूनाकर्ण जो कि स्त्री बन चुका है तो स्त्री सुलभ लज्जा के साथ उनके सामने नहीं आता। जब उनसे पूछा जाता है यक्ष जो सूनाकर्ण जो है बाहर क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके जो मंत्री हैं वो कहते हैं साहब इस वक्त जो है वो स्त्री के वेश में है, उसने अस्तित्व ग्रहण कर लिया है इसलिए वापस नहीं आ रहा है, आपसे लज्जा कर रहा। तो यक्षों के राजा कुबेर जो है सारी कथा सुनते हैं, सारी कहानी सुनते हैं, उसके बाद उसको श्राप देते हैं कि तुम जीवन भर स्त्री बने रहोगे, कभी पुरुष नहीं बन पाओगे। तो एक वर्ष के बाद जो है जब शिखंडी वापस लौट के आता है और कहता है कि मेरे को जो है मेरा अस्तित्व वापस दे दो, अपना पुरुषत्व वापस ले लो, तो स्थूनाकर्ण कहते हैं कि नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि मैं जो है शापित हूं और मेरे को जीवन भर अब स्त्री ही बने रहना है, मैं पुरुष नहीं बन सकता। तो वो शिखंडनी जो है शिखंडी बन गई। तो शिवजी ने जो वचन में चेंज किया था, वचन दिया जा चुका है उसका उल्लंघन नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उसको आप जो है ये नहीं कह सकते अच्छा ये वापस कर दे दूसरा ले ले, रिटर्न एंड टेक अनदर, ऐसा नहीं है कि जो वचन दिया जा चुका है उस वचन का पूरा तो होना ही है, बट उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसा कि हम महाभारत में इस उदाहरण से देखते हैं। यहां भी जो है अब कश्यप मुनि जो है उस वचन का अगले श्लोक जब हम पढ़ेंगे, बहुत सारे श्लोकों के अंदर उसका मॉडिफिकेशन है कि किस तरीके से उन्होंने दिति को वैष्णव बनने के लिए ऐसे ऐसे वचन का एक फॉर्मेट बना दिया है कि तुम्हें इस फॉर्मेट पे चलना है तब तुम्हें इंद्र को मारने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। उन्हें पता है कि इस फॉर्मेट का उल्लंघन कहीं ना कहीं जरूर होगा, इतनी शर्तें बता दी जाती हैं, इतनी शर्तें बता दी गई हैं, इतनी कंडीशंस बता दी गई हैं कि उन कंडीशंस का कहीं ना कहीं उल्लंघन जरूर होगा। जब उल्लंघन होगा तो उस वचन से मैं बंध वचन के बंधन से बच जाऊंगा। और दूसरी बात कि वचन जो है इस प्रकार के हैं, वो वचन ऐसे हैं जिनको पालन करके कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता। वैष्णव बनने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं उनके जो है वचन यहां पर लिए जा रहे हैं। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये रूल है, ये रेगुलेशन है, ये नियम है, ये नियम है, ये कंडीशन बहुत सारी बता दी गई कि इनके ऊपर चलोगे तब तो आपकी गाड़ी चलेगी, तब आपको ये प्राप्त होगा। क्योंकि दिति जो है ऐसा पुत्र चाहती है जो इंद्र का वध कर सके। पर यहां जो है इसके ट्रांसलेशन में लिखा अनुवाद में कि इंद्र जो है वध किए जाने के योग्य नहीं है। तो क्यों योग्य नहीं है? व्हाई? कुछ तो कारण होगा ना। इंद्र को मारना नहीं चाहिए या उसका वध नहीं करना चाहिए, तो कुछ तो कारण होगा कि वो योग्य नहीं है। क्योंकि उसको उसके कर्म के फलों के अनुसार स्वर्ग लोक का राजा पद प्राप्त है। स्वर्ग लोक के राजा का पद अर्थात उसके अंडर जो है भगवान ने कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं जिसके द्वारा वो स्वर्ग लोक को कंट्रोल करता है। अब कर्म के फलों का जो डिसीजन है कि उसका फल क्या प्राप्त होना चाहिए, ये किसके हाथ में है? उसी। हम भी अगर कर्म का फल भोगते हैं तो कर्म का फल जो है किसके अनुसार हम लोग भोगते हैं? हु इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी? 2.47 में भगवान क्लियरली कहते हैं भगवद गीता में, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमात संग अस्तु अकर्मणि, कि तेरे पे कर्म के फल का अधिकार नहीं है। अधिकार तो केवल उनके पास है कि आपको अल्टीमेटली क्या देना है। वाया मीडिया यमराज जी है, चंद्रगुप्त है, बहुत सारे लोग हैं, वो अलग सिस्टम है, बट एक्चुअली बेसिकली किसके पास है? भगवान के पास है। तो भगवान ने जो है इंद्र को डिप्यूट किया है, उसको स्वर्ग लोक का राजा बनाया। इसलिए जो है भगवान का जो वचन है, भगवान ने जो कमिटमेंट करी हुई है कि तुम इंद्र लोक के राजा रहोगे, उसको काटना या तोड़ना जो है वो कश्यप मुनि नहीं करना चाहते। वो योग्य नहीं, इसकी योग्यता नहीं कि उसका वध किया जाए। अब यहां कह रहे हैं दिति ऐसा पुत्र चाहती है जो इंद्र का वध कर सके, आखिर वे स्त्री है अतः अधिक चतुर नहीं है। मैं उसे ऐसी शिक्षा दूंगा कि इंद्र के वध के विचार को त्याग कर स्वयं वैष्णव अर्थात कृष्ण की भक्त बन जाए। यदि वैष्णव नियमों को अंगीकार कर लेती है तो कलुषित हृदय निश्चय ही शुद्ध हो जाएगा। तब यहां थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वैष्णव कौन है, कि वैष्णव की परिभाषा क्या है, वैष्णव किसे कहते हैं। श्रील बहुपाद जो है अपने लेक्चर्स में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और भागवतम में सातवें स्कंद में ये चर्चा करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जनरल प्रिंसिपल्स क्या है वैष्णविज्म के। असत संग त्यागा ऐ वैष्णव आचार, स्त्री संगी एका साधु कृष्ण भक्त आर, मध्य लीला 22वां अध्याय 87वां प्यार। असत संग त्यागा ऐ वैष्णव आचार, असत एकास स्त्री संगी कृष्ण भक्त आर। असत एका स्त्री संगी, इसका अर्थ क्या है? और कृष्ण भक्त आर, इसका अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, स्त्री संगी मीन्स वन हु इज अटैच्ड टू वुमेन। जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को एनग्रॉस कर लेते हो कि आपको उसके सिवाय कोई बात सूझती नहीं है, और कृष्ण भक्त आरा मीन्स जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, हु इज नॉट ए डिवोटी ऑफ कृष्ण। उसने संसारिक लोगों के साथ अपना संबंध बांध रखा है। मेटेरियलिस्टिक पर्सन जो कि नॉन डिवोटीज हैं उनके साथ उसकी मित्रता है, उठना बैठना है, संग करना है, भक्तों के साथ उसका कोई संग नहीं है। वैष्णव आचार का मतलब यह है कि उसे जो है असत का संग त्याग देना। तो असत का मतलब यह है जो सत के साथ नहीं है, अर्थात जो भगवान कृष्ण के साथ नहीं है, भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, उसका जब हम संग करते हैं तो हम वैष्णव नहीं रहते। जब हम भगवान कृष्ण के भक्तों का संग करते हैं तब हम वैष्णव कहलाते हैं। और संग करना क्या होता है, मैं अभी ना भक्त का संग करके आया हूं। अच्छा, क्या किया? मैं उसके पास बैठा था एक घंटा भर, हम दोनों साथ साथ बैठे थे, तो संग हो गया क्या? हम दोनों साथ साथ बैठे थे, संग हो गया? इतना सा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। क्योंकि भक्त का संग बैठने से भक्त के जो परमाणु हैं आपके अंदर अवश्य प्रवेश किए हैं, उनका जो ऑरा है उसका इफेक्ट आपके ऊपर आया है। बट एक्चुअल संग क्या है, इसके हम कहते हैं कि आप भक्त का संग कर रहे हैं तो उस संग का अर्थ क्या, व्हाट डज इट मीन? ये लड़का शराबियों के साथ रहता रहता शराबी हो गया, ये चर्सियों के साथ रहता रहता चर्सी हो गया, ये गुंडों के साथ रहता रहता गुंडा हो गया है, बदमाशों के साथ ये बदमाश हो गया है, व्हाट डज इट मीन? कि आप जिसका संग कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज, उसके गुण आपके अंदर आ गए। यू हैव इम्बाइब, यू हैव, आपने उन गुणों को स्वीकार करके अपने आप को उन गुणों में ढाल लिया, वो गुण आपके अंदर आ गए। शराबियों का संग किए तो आप शराब पीना शुरू कर दिए, चरसियों का संग किए तो चरस पीना शुरू कर दिए, गुंडों का संग किए तो गुंडई आपके अंदर आ गई, गुंडा बन गया आप। जब भक्त का संग किए तो क्या आप भक्त बने? अगर आप भक्त का संग करने के बाद भक्त के गुणों को अपने अंदर नहीं ढालते हैं, अपने अंदर नहीं लेते हैं, तो आपने भक्त का संग नहीं किया। डेफिनेटली जब भक्त आपके साथ बैठता है, जब भक्त से आप मिलते हो, तो उसके जो ऑरा है उसका जो परमाणु है आपके अंदर अवश्य इफेक्ट करते हैं, आपका मन परिवर्तित होता है उसके साथ रहने से। बट आप अभी भक्त नहीं बने, भक्तों का साथ रहता था इसलिए भक्त बन गया। अरे भक्तों के साथ पांच साल से घूम रहा, आज तक भक्ति नहीं आई इसे, आज तक भक्त नहीं बना। मतलब घूम तो रहा है उनके साथ पर उनके गुण उसने अपने अंदर नहीं उतारे। तो यहां पर जो है, जब आप सत का संग करेंगे अर्थात भक्तों का संग करेंगे, कृष्ण का संग करेंगे, तो आपके अंदर जो है कृष्ण भक्त के गुण आने चाहिए। तो वैष्णव के बारे में श्री प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंध में, हमने पढ़ा है पहले अध्याय के 40वें श्लोक में कि वैष्णव कौन है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि माधवाचार्य जो हैं वो कहते हैं वेदा नाम प्रथमो वक्ता हरिर एव यतो विभु अतो विष्णु आत्मका देवा इति अहर वेदा वेदिना। कि वेदों के अंदर जो है भगवान विष्णु की आराधना के लिए बताया गया है, और जो वेदों के वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है, वो वैष्णव है, ही इज ए वैष्णव। बड़ा क्लियर डेफिनेशन है। क्यों? कि विष्णु जो है वो वेदों के उद्गम है, विष्णु से ही वेद प्रकट हुए। इसलिए जो विष्णु की आराधना करता है उसी को वैष्णव कहना चाहिए। फिर प्रभुपाद कहते हैं विष्णु अस्य देवता इति वैष्णवा, कि वैष्णव वो है जिसने भगवान विष्णु को अर्थात भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया है। ही हैज एक्सेप्टेड दैट विष्णु एज एवरीथिंग, विष्णु को सब कुछ मान लिया है, वही वैष्णव है। सब कुछ मानने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? कि मैंने जो है भगवान कृष्ण को सब कुछ मान लिया, इसका अर्थ क्या? मन मना भवमद भक्तो अद्याजी मां नमस्कुरु, कि मैंने अपना मन भगवान कृष्ण को दे दिया है, उनकी पूजा करना है, उनको नमस्कार करना है, उनका भक्त बनना है, और अल्टीमेट क्या है, सर्वधर्मान प्रत्यजम मामेकम शरणम रजा, मैंने उनकी शरण ग्रहण कर ली है, मैं उनके शरणागत हो गया हूं। इसका मतलब है कि अब आप जो है भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब कहते हैं कि वैष्णव कौन है, जिसने अपनी प्रहरी भक्त विलास से कोट लिया गया है, प्रभुपाद लिखते हैं कि जिसने वैष्णव मंत्र के अंदर अपने आप को दीक्षित किया है। वैष्णव मंत्र अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर श्रील भोपाल बताते हैं कि वैष्णव का अर्थ है जो कृष्ण तत्व वेता, अर्थात जो कृष्ण के विज्ञान में साइंस ऑफ कृष्णा में एक्सपर्ट है, पटु है, दक्ष है, अंडरस्टैंड करता है, उसको फॉलो करता है। फिर बताते हैं कि वैष्णव का अर्थ है जो द्वादश तिलक लगाता है, शिखा रखता है, सूत्र कंठी, इस तरह के जो भी वैष्णवों के परिधान है उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करता है, कहीं कोई कमी नहीं रखता। अब आगे लिखते हैं प्रभुपाद बड़ा सुंदर कि सत्यराज ने कहा कि मैं वैष्णव की पहचान कैसे करूं। उसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं कि जो हरि नाम मंत्र का जप करता है वो वैष्णव है। स्पष्ट उत्तर दिया है, whosoever chants the holy name of Krishna just once, एक बार भी कर लेता है तो उसको वैष्णव मानना चाहिए, टॉप मोस्ट ह्यूमन बीइंग है, वैष्णव है। तो जब भी हम देखते हैं किसी के गले में झोली है, किसी गले में माला है, चाहे कंठी धारण कर रखी है, तिलक लगा रखा है, तो उसको वैष्णव मानना चाहिए, और उसका बहुत ही फायदा होता है। कभी आपने इसका फायदा नोट किया भौतिक संसार में? आध्यात्मिक संसार में तो फायदा हो ही रहा है, कभी आपने जो है भौतिक संसार में फायदा नोट किया इसका एवर? यस प्रभु, खुशी होती है। कैसी खुशी होती? खुशी का तरीका क्या है? हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर हैप्पीनेस? मैंने आपसे कहा था भौतिक संसार में लाभ, अभी वो लाभ की चर्चा करूंगा। हाँ जी, कैसे परिचित फील करेंगे? हाँ जी, इनको तो बहुत लाभ हुआ है। हमारे एक भक्त जो हैं मेरे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आए, तो मैंने उन्हें कुछ टेस्ट लिख के दे दिए, महंगे महंगे टेस्ट थे, थोड़ा उनका ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो तिलक नगर में जनता एक्सरे में चले गए। जनता एक्सरे वाला लाइफ मेंबर है और भक्त है, मतलब जन्माष्टमी उन्माष्टमी भी डोनेशन देता है और आता है मंदिर के अंदर, बड़े संतनगर की बात है। तो जैसे ही भक्त वहां पहुंचे, तिलक लगाया, हस्बैंड वाइफ दोनों ने, अपने टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने देखा उनको, हरे कृष्ण, अच्छा मंदिर से आए हैं। वो फट से अपने पीए को बुलाया, बोले सारे टेस्ट फ्री कर दीजिएगा इनके, ऑल टेस्ट फ्री। तो भौतिक संसार में तो लाभ हो ही रहा है, आध्यात्मिक संसार के लाभ को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इमेजिन कि आध्यात्मिक संसार में लाभ कैसे होता है। पर उसमें एक शर्त है, एक कंडीशन है हम लोगों की, कि हमें वैष्णव से मिलना कैसे चाहिए। इन्होंने कहा गाड़ी में मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं, पैंट शर्ट पहने होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वैष्णव कहा वहां बाजार घूमने जाते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। हम लोग मंदिर में आते हैं तो वैष्णव मिलते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, तो वैष्णव से मिलना कैसे चाहिए। तो महाविष्णु स्वामी जो है, हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि हमें भक्त से कैसे मिलना चाहिए। हमारी कंडीशन एक वैष्णव को देखने के बाद कैसी होनी चाहिए, हमारे हालात कैसे होने चाहिए, उन्होंने बड़ा सुंदर एक्सप्लेन किया है। आमतौर पे हम कई बार देखते हैं कि लोग आपस से अगल बगल से गुजर जाते हैं, वो हरे कृष्णा भी नहीं करता। करते हैं प्रभु जी, हर व्यक्ति से हरे कृष्णा होती है नहीं होती ना। तो हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी बताते हैं, एक बड़ा सुंदर उन्होंने एक जो है श्लोक गढ़ा है, इसमें कहते हैं चार मेले 64 खेले नाचे 7 करोड़। बड़ी पुरानी बात है, कई बार हो चुकी है, पर रिमाइंडर होना चाहिए, बार बार याद आना चाहिए। चार मेले का अर्थ यह है कि दो हाथ हमारे और दो हाथ आपके जो है वो हरे कृष्णा करते हुए मिल रहा है। 64 खिले अर्थात 32 दांत मेरे मुस्कुरा के खिलने हैं और 32 दांत आपके मुस्कुरा के खिलने चाहिए। हरे कृष्ण, गुस्से में नहीं, मुंह परली तरफ किया और हरे कृष्णा बोल दिया, गुस्से में जबरदस्ती बोलना पड़ रहा है। वैसे तो मैं इसको पूछता भी नहीं, द्वेष ईर्ष्या इससे पूछता भी नहीं, चल फिर भी बोल देता हूं, ऐसा नहीं। चार मिले 64 खिले नाचे 7 करोड़। 7 करोड़ का अर्थ यह है कि 3.5 करोड़ बाल मेरे रोंगटे खड़े हैं और नाच रहे हैं, सारे बाल नाच रहे हैं, 3.5 करोड़ बाल आपके नाच रहे हैं। मतलब वैष्णव को जब आप मिलते हैं तो वैष्णव को मिलने के बाद आपके अंदर जो है प्रसन्नता होनी चाहिए, आपके अंदर जो है दुराव की भावना नहीं होनी चाहिए, मजबूरी का भाव नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती का भाव नहीं होना चाहिए। अब जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आप जो है वैष्णव किसको मानोगे। फिर वही चर्चा दोहरा के आती है कि जो भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है और ग्रेजुअली उसमें परफेक्शन ले लेता है उसको वैष्णव पुकारना चाहिए। फिर वो बार लिखते हैं, श्लोक कोट करते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चय सुपाके चय पंडिता समदर्शना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखता है। आप सबको समभाव से देखते हैं। इसमें एक चीज समझने वाली है कि आपका दृष्टि समभाव है, व्यवहार समभाव नहीं होगा। व्यवहार मीन्स आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, समभाव नहीं होगा। अगर आपने हाथी को देखा है तो हाथी के ऊपर आप सवारी करेंगे, कुत्ते पे सवारी नहीं करेंगे। बट उनके भी भगवान है, उसकी हृदय में भगवान है, इसलिए आपको उसे जो है समभाव से देखना। फिर गोपाल लिखते हैं कि वैष्णव की परिभाषा जब आप और हायर प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो क्या है, वो इस बात का पर्टिकुलरली नोट करता है, प्रैक्टिस करता है, उसमें परफेक्टली उठता है। क्या भाव है, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना माने न माने देने कीर्तनीय सदा। कि वैष्णव जो है अपने आप को तृण तनके से भी नीचा मानता है, पीठ से ज्यादा सहिष्णु और सहनशील मानता है, अपने मान सम्मान की चिंता नहीं करता न इच्छा करता है, परंतु दूसरे को पूर्ण रूप से मान सम्मान देता है। जो तीसरा पॉइंट है बड़ा मुश्किल है, पहला कठिन है, दूसरा उससे कठिन है, तीसरा उससे भी कठिन है, और जब ये तीन पॉइंट जब तक नहीं होंगे तो चौथा पूरा नहीं होता है, तब तक आप जो है अच्छे तरीके से कृष्ण कीर्तन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको अपने आप को तिनके से भी नीचा मानना है। व्हाट डज इट मीन कि तिनके को रौंदते हुए हम लोग निकल जाते हैं परंतु वो कभी उफ नहीं करता। आप पे कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी कष्ट आए, कितने भी परेशानियां आए, कैसा भी विषम व्यवहार आपके साथ लोग करें, परंतु आपको कभी उफ नहीं करनी है। भक्ति में आगे बढ़ते रहना, उसको मान सम्मान देना। जब हम भगवद गीता का 11वां अध्याय पढ़ते हैं, 55वां श्लोक पढ़ते हैं, तो उसमें एक शब्द आता है निर्वैर सर्वभूतेषु, कि हमें किसी भी प्राणी के साथ जो है वैर नहीं करना है। अब आपने मेरा बुरा कर दिया, मैं तो आपका दुश्मन हो गया। हरे कृष्णा तो बंद कर ही करिए, आपकी टांग खींचने का मूड हो गया, जब मौका मिलेगा चादर खींच दूंगा, गिरा ही दूंगा आपको नीचे। करना क्या है, भक्त की क्वालिटी क्या है? भक्त ये कहता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, मेरा प्रारब्ध है, मुझे ये भोगना था, और मेरे इस पाप के फल को, मेरे प्रारब्ध को भुगतवाने के लिए इस वक्त से पाप हुआ, इसने पाप किया है, उसने पाप किया है मेरे पाप का फल भुगतवाने के लिए, इसमें इसका दोष नहीं है, तो उसको दोषी नहीं मानता। पहली बात, और दूसरी बात वो कहता है कि इसने जो पाप किया है मुझे इसके साथ ज्यादा से ज्यादा संग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, और इसको कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए ताकि इसका पाप का जो फल है वो नष्ट हो सके। इसको जो पाप का फल मिलना है वो इसको ना मिले, क्योंकि उसके प्रति कंपैशन हो जाता है, उसके प्रति करुणा जागृत हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति दूसरे के दुख से दुखी होता है, दूसरे के प्रति करुणामय हो जाता है, वो वैष्णव। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि हम कहलाना वैष्णव एक अलग बात है, होना वैष्णव एक अलग बात है। हम लोग कह देते हैं कि वैष्णव है, परंतु क्या वो वाकई वैष्णव है? उसके अपने गुण ऐसे होने चाहिए कि वो वैष्णव बनने के योग्य हो। तो प्रभुपाद जो है एक्सप्लेन करते हैं कि वैष्णव अर्थ है परा दुखा दुखी, जो दूसरे के दुख में दुखी रहता है। वैष्णव जो है उसकी क्वालिटी क्या है, वो सारी बद आत्माओं को डिलीवर कर सकता है, उनको तार सकता है। अर्थात पतिता नाम पावनेभ्यो, मतलब पतिता नाम पावन है, पतितों का उद्धार करने के योग्य है। जो भगवान कृष्ण की शरण ले लेता है, अपने कर्मों के फल के प्रति आकर्षित नहीं होता, कर्मों के फलों को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वही वैष्णव है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रियल वैष्णव कौन है, और एडवांस जाए। श्रीमद् भागवतम में एक लेक्चर में कहते हैं रियल वैष्णव का अर्थ है परमहंस। परमहंस क्या है कि उनको उसको जो है किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं रहती। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णो शीलनम भक्तिर उत्तमा। वो भगवान कृष्ण की भक्ति में हर समय संलग्न रहता है, बिल्कुल कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता। अन्य अभिलाषता शून्यम, उसे जो है और किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं रहती। संसारिक सुख भोग इंद्र तृप्ति के बारे में उसका कोई अट्रैक्शन नहीं है। उसको अपने कर्मों का फल प्राप्त हो, फ्रूटिव एक्टिविटीज नहीं करता है और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन नहीं करता। दर्शन शास्त्र में ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, कुछ नहीं। सिंपल बात एक्सेप्ट करता है कि मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है और जो गुरुजन बता रहे हैं उसके अनुसार मुझे भक्ति के मार्ग पे चलना है। दैट्स ऑल फिनिश्ड, पूर्ण श्रद्धा है उसकी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आती है कि ब्राह्मण और वैष्णव, इन दो में भेद क्या है। शुरुआत होती है द्विज से। द्विज का अर्थ क्या है? ट्वाइस बॉर्न। ट्वाइस बॉर्न मीन्स जिसका उपनयन संस्कार हो गया है, उसको एक उस ब्राह्मण को जिसने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है पर उसका उपनयन संस्कार भी हो गया है, उसको हम द्विज की उपाधि दे देते हैं। वैष्णव नहीं कहते, एक्चुअल ब्राह्मण भी नहीं कहते। उसके बाद आता है विप्र। विप्र का अर्थ है कि छह कार्यों में निपुण है, दान देना और दान लेना, ज्ञान देना और ज्ञान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। जो इन षट कर्मों में निपुण है उसको विप्र कहते हैं। अब इससे ऊपर होता है उसको ब्राह्मणिकल क्वालिटीज अपने अंदर लानी है, ब्राह्मण बनना। चाहे उसने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है पर ब्राह्मण नहीं है अभी वो, ब्राह्मण बनने के लिए उसको ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात भगवान का ज्ञान होना चाहिए। ये मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ कृष्णा, उसे कृष्ण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कृष्ण तत्व का वेता होना चाहिए। जब वो ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम के परपट में तीसरे स्कंद में, ब्रह्म ज्ञानाति ब्राह्मणः, अर्थात जब वो जो है ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वो ब्राह्मण का पद प्राप्त करता है। अब वैष्णव क्या है? एक बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद ने इस्तेमाल करी है, मैं उसको एज इट इज पढ़ के सुनाता हूं। ए ब्राह्मणा इज वन हु हैज अंडरस्टूड ब्रह्म एंड वैष्णवा इज वन हु हैज अंडरस्टूड पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। जिसने भगवान के सगुण साकार रूप का, सच्चिदानंद रूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भगवान के सगुण साकार रूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और क्वालिटी क्या है उसके लिए? विद्या विनय संपन्न है, अर्थात उसको विनीत होना है, विनम्र होना है और कृष्ण के प्रति शरणागत होना है, वही वैष्णव इज ए वैष्णव। तो वैष्णव वो है जो पहले ब्राह्मण का पद अख्तियार कर चुका है, अब ब्रह्म के ज्ञान के ऊपर वो भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है और फिर उनके प्रति शरणागत हो जाता है, और प्लस अपने अंदर जो है विनम्र होना, दक्ष होना, पटु होना, सारी क्वालिटीज जो है वैष्णव की उनको अडॉप्ट करता। तो यहां पर जो है जब कश्यप मुनि जो है उसको ज्ञान देंगे तो ज्ञान देते हुए जो है उसको ऐसी कंडीशंस, जब अगले श्लोकों में आप पढ़ोगे ऐसी कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि वो कंडीशंस अगर आप अपने पे अप्लाई करो तो आपको लगोगे हम तो कहीं कुछ है ही नहीं, हम तो 0/0 है, कुछ नहीं हमारे पास, हम तो इनमें से बहुत सारी जगह है जहां पर फेल है। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल टॉपिक, बहुत ही सुंदर टॉपिक है ये। यहां पर कह जा रहा है कि भगवत गीता में जो पुष्टि करी गई है कि वैष्णव नियमों के रंच मात्र पालन से भी संसार के बड़े से बड़े भय से छुटकारा पाया जा सकता है। वो बड़े से बड़ा भय क्या है? व्हाट इज दैट? सबसे बड़ा भय इस संसार के अंदर जो हम लोगों को है, समझते नहीं है, ये अलग बात है, वी डोंट अंडरस्टैंड, पर भय है। वो भय क्या है? मृत्यु का भय नहीं है प्रभु जी, भय है पुनर्जन्म का। डर किस बात का? मृत्यु किसको आती है? जिसका जन्म होता है। बुढ़ापा किसको आता है? जिसका जन्म होता है। बीमारी किसको आती है? जिसका जन्म होता है। तो डर किस बात का है? मृत्यु का है, बुढ़ापे का, बीमारी का है, या जन्म का? ना जन्म होगा ना सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है तभी तो आ रही है जब जन्म हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो है कष्ट है कि मेरा जन्म नहीं होना चाहिए दोबारा से, इस संसार में से इस शरीर के छूटने के बाद मुझे भगवत धाम जाना चाहिए, अर्थात मुझे मुक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए। यहां यह कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति जो है वो भगवान की भक्ति में लग जाता है, भगवान के आदेश का पालन करता है, जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो, यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे तो अपने आप को कर्म के बंधन से मुक्त कर लोगे। कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब है अब तुम्हें मेरे पास लौट के आना। कंडीशन क्या है? कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, जो बुद्धि में प्रदान कर रहा हूं, उसी बुद्धि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करके उसी ज्ञान के अनुसार तुम्हें कार्य करना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, अपनी मर्जी नहीं लगानी। तो आपके कहने पे तो मैंने काम किया, परंतु मैंने कुछ पहले पाप भी तो किए हुए हैं, कुछ गलत काम भी तो किए हुए हैं, कुछ मैंने जो है आपकी विशेष सेवा में, तो मैं 50 साल की उम्र में आया, उसके पहले क्या होगा। तो भगवान यह कहते हैं कि इस प्रयत्न का, इस प्रयास का कभी भी उल्टा फल नहीं होता। और अगर अगर तुम्हें जो है लिबरेशन नहीं मिल पा रही है, मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तुम्हारा पुनर्जन्म होता है, तो तुम्हारी भक्ति वहीं से आरंभ हो जाएगी जहां से तुमने छोड़ी थी, अर्थात इस प्रयास की हानि नहीं होती। भौतिक संसार में पुनर्जन्म होने के बाद अब का कबूतर खा खरगोश पहले से ही पढ़ना शुरू कर देते हो, पहले भी यही पढ़ा था, अगले जन्म में भी, उस अगले जन्म में भी यही, परंतु इसकी करने के बाद आपकी भक्ति जो है जहां खत्म करी थी वहीं से आरंभ हो जाती है। आपको दोबारा से जो है भक्ति जीरो से स्टार्ट नहीं करनी पड़ती। दिस इज द एडवांटेज, ये इसका फायदा है। इसलिए जो है यहां जो है अब वो इंद्र के प्राणों की रक्षा करेंगे और दिति को वैष्णव बनाने का प्रयास करेंगे और ऐसे पुत्रों की प्राप्ति होगी जो कि देवता बन जाएंगे। हरे कृष्ण। शिल्पोपाद की।